आज है 2 अक्टूबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। अमेरिका के ओरेगन में गोलीबारी, 13 लोगों की मौत। सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ के शांति को लेकर दिए गए 4 सूत्र सुझाव को नकारा।
4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा।
बिहार में बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, क्या कुछ नया है?
50 मुख्य बिंदुओं में से अधिकतर पॉइंट जो पिछली सरकार यहाँ चल रही थी उसने जो स्कीम्स लागू की थी यहाँ पर, ई गवर्नेंस, राइट टू गवर्नमेंट सर्विस, वो सारी चीजें इसमें कही गई हैं।
राजस्थान में क्यों छात्रों के खिलाफ दायर हुई FIR, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। स्थानीय अग्निशमन विभाग ने ट्विटर पर इस गोलीबारी की पुष्टि की है और लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर शख्स भी पुलिस की गोली से मारा गया। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने इस हादसे पर संवेदना जाहिर करते हुए लोगों से अपील की है कि वो बंदूक पर नियंत्रण का पालन करें। फलस्तीन अधिकृत वेस्ट बैंक में एक इसराइली दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे अपनी कार से फलस्तीनी कस्बे बाइत फुरिक के पास से गुजर रहे थे जब हमलावर ने उनकी कार पर गोलियां चला दी। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने इस हमले को निर्मम और बर्बर कृत्य बताया है। सेना ने कहा है कि वो इस इलाके में सैकड़ों सैनिकों को तैनात कर रही है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में एक सैन्य मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 10 लोग मारे गए हैं। खबर है कि जलालाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मारे जाने वाले लोगों में अमरीकी सेना के 5 सदस्य और कुछ आम नागरिक भी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उस वक्त दुश्मन की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सीरिया में रूस की सैन्य कार्रवाई से सीरिया के गृहयुद्ध के और लंबा खिंच जाने का खतरा है। रूसी लड़ाकू विमानों ने दूसरे दिन भी सीरिया पर हमला जारी रखा। इस पर प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि रूसी विमानों के ये हमले बेतरतीबी से किए गए हैं।
कैरिंग आउट इंडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द सीरियन ऑपोजिशन इज डेंजरस फॉर रशिया।
सीरिया में बेतरतीबी से की गई सैन्य कार्रवाई रूस के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे सीरिया का सांप्रदायिक संघर्ष और लंबा खिंच जाएगा और इससे रूस के इस संघर्ष में और भी अधिक उलझ जाने का खतरा है। ये थे जॉश अर्नेस्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि तालिबान लड़ाकुओं के लगातार प्रतिरोध के बावजूद सरकारी बल इस शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सेना के कमांडर इंचार्ज मुराद अली मुराद का कहना है कि उनके दस्ते ने तालिबान को हरा दिया है, लेकिन शहर की गलियों में लड़ाई अभी जारी है, जबकि नेटो देशों की मदद से अफगान सेना 3 दिन के संघर्ष के बाद बलवाइयों को पीछे खदेड़ने में कामयाब हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि वो फलस्तीन से शांति वार्ता फिर शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फलस्तीन प्रशासन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का आह्वान किया कि वे इस वार्ता में शामिल हों। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति अब्बास ने कहा था कि फलस्तीनी इसराइल से हुए शांति समझौते से जुड़ाव महसूस नहीं करते क्योंकि इसराइल लगातार इस समझौते को तोड़ता रहा है। अपने भाषण में इसराइली प्रधानमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान से हुए परमाणु समझौते से शांति नहीं बल्कि युद्ध की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में पुलिस का कहना है कि ओरेगन राज्य के कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि स्टेट अटॉर्नी जनरल ने इससे पहले कहा था कि इस गोलीबारी में 13 लोग कम से कम मारे गए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार इस गोलीबारी में कई घायल भी बताए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, क्या जानकारी है?
देखें, ये घटना ओरेगन राज्य के अम्पक्वा कम्युनिटी कॉलेज की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार लगभग सुबह 10:37 पर इस कम्युनिटी कॉलेज में एक बंदूकधारी के घुसने की खबर पुलिस को मिली और पुलिस के वहां पहुंचने तक उस बंदूकधारी ने एक क्लास पर गोलियों की बौछार की। अब से कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस गोलीबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए और 7 घायल हैं। बंदूकधारी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है, वो पुलिस की गोली से मारा गया है। वो कौन था, उसका मकसद क्या था, क्या वो उस खास क्लास को ही निशाना बनाना चाह रहा था या उसने अंधाधुंध गोली चलाई है, इस पर पुलिस फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। और ये कॉलेज ओरेगन के रोजबर्ग शहर में है जहां की आबादी लगभग 22,000 बताई जाती है।
जी वही, इस हमले पर बराक ओबामा ने भी गन कंट्रोल की बात कही है, क्या कहना था उनका?
देखें, राष्ट्रपति ओबामा गन कंट्रोल की बात जब से आए हैं वो सत्ता में, तब से इसकी बात वो करते रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे लगने लगा है कि एक ये रूटीन सी घटना हो गई हो। हर महीने 2 महीने किसी कॉलेज या स्कूल में किसी बंदूकधारी के घुसने की खबर आती है, कई मामलों में उस पर पहले ही काबू पा लिया जाता है और कई मामलों में आज जैसी घटना होती है। तो राष्ट्रपति ओबामा का भी यही कहना था कि अमरीका जैसे आदि होता जा रहा है इस तरह के कत्लेआम का। वो खुद जो बयान देते हैं उनका कहना था कि वो लगता है जैसे रूटीन हो गया हो, इसकी रिपोर्टिंग रूटीन तरीके से होती है, इसकी बहस रूटीन हो जाती है और फिर लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो अपने परिजनों को खो देते हैं इसमें उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। राष्ट्रपति ओबामा की आवाज में एक गुस्सा तो था ही, साथ साथ एक हताशा भी झलक रही थी। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
As I said just a few months ago, and I said a few months before that, and I said each time we see one of these mass shootings, our thoughts and prayers are not enough. It's not enough.
तो राष्ट्रपति ओबामा कह रहे थे कि जैसे कुछ महीने पहले, और उसके कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि जब भी हम इस तरह का कत्लेआम देखते हैं तो सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं काफी नहीं हैं। ये उनका कहना था कि ये हमारे भीतर के गुस्से को, दुख को नहीं दर्शाता है और ये फिर से ऐसी घटना नहीं हो उसे रोक भी नहीं पाता है। बीबीसी को ही जुलाई में जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका एकमात्र देश नहीं है जहां लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, लेकिन ये एकमात्र देश है जहां हर दूसरे महीने इस तरह का कत्लेआम नजर आता है। ओबामा ने, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा सुशीला, अपने पूरे शासनकाल के में बंदूकों की खुलेआम बिक्री के खिलाफ सख्त कानून लाने की पैरवी की है, लेकिन बंदूक रखने के हक में काम करने वाले प्रभावशाली संगठन नेशनल राइफल एसोसिएशन ने कांग्रेस पर दबाव डालकर उनकी कोशिशों को नाकाम किया है। मैंने एनआरए के कई सदस्यों से इसके पहले बात की हुई है और उनका यही कहना रहा है हमेशा से कि गोली बंदूक नहीं चलाती, इंसान चलाते हैं, और सरकार को मानसिक बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, न कि बंदूकों पर रोक लगानी चाहिए। और ये सिलसिला आप देखती हैं कभी कोलंबाइन, कभी न्यू टाउन, कभी चार्ल्सटन में चलता जा रहा है।
जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। वहीं भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी हुई बातचीत पर कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्व समुदाय को चेताया कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं बल्कि आतंकवाद आतंकवाद होता है। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय को चेताया है कि आतंकवाद के खिलाफ हर जगह लड़ना होगा।
हम आतंकवाद की परिभाषा तय करने में ही उलझे हुए हैं। हमें ये समझना होगा कि आतंकवादियों में अच्छे और बुरे के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता और न ही आतंकवाद को मजहब के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो मानवता के प्रति अपराध करता है।
सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा,
इन हमलों में केवल भारत के नागरिक नहीं बल्कि अनेक देशों के निर्दोष नागरिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। मैं समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इन हमलों की योजना बनाने वाला आतंकवादी सरेआम खुला घूम रहा है।
पाकिस्तान के बारे में सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर, सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं।
हम सब जानते हैं कि ये हमले भारत में अस्थिरता फैलाने और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।
भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उनकी मदद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में दिए गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान में 4 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का हवाला देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा,
4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठ कर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के DGMOs आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के NSAs राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा, ये मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ।
भारतीय विदेश मंत्री ने विश्व के देशों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी आतंकवाद को सरकार के औजार के तौर पर प्रयोग करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने सन 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक कन्वेंशन का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन उसे अब तक पारित नहीं किया गया। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को जरूरी बताते हुए कहा कि अब 2015 में उस सुरक्षा परिषद के साथ नहीं रहा जा सकता जो 1945 की वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए गठित की गई थी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो सुषमा स्वराज ने दिया UN में करारा जवाब, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच चल रही समस्या को सुलझाया जा सकता है? आइए सुन लेते हैं ब्रजेश उपाध्याय की ये डायरी।
सिलिकॉन वैली में किसी कंपनी के लिए कामयाबी का राज ये है कि पहले एक बड़ी सी प्रॉब्लम ढूंढो, फिर देखो कि कितने लोग इसके हल का इस्तेमाल करेंगे और फिर लग जाओ एक ऐप बनाने में। जितने ज्यादा लोगों का फायदा, उतना ही कामयाब ऐप और उतनी ही गर्म उस कंपनी की जेब। तो मेरे प्यारे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सभी छोटी बड़ी कंपनियां, हम भारत पाकिस्तान वालों की एक आपस की बड़ी सी प्रॉब्लम है और अगर आप इसके हल के लिए एक ऐप बनाते हैं तो 1.5 अरब डाउनलोड तो कहीं नहीं गए हैं। ये प्रॉब्लम तभी से है जब से हम पैदा हुए, यानी तकरीबन 70 साल होने को आए। मुश्किल से अंगूठा चूसना शुरू ही किया था कि एक दूसरे को आंखें दिखाने की लत लग गई और वो जा नहीं रही। हम जंगे लड़ते हैं, हर नई नस्ल को अपने हिसाब से इतिहास पढ़ाते हैं, भले ही हम खुद भूखे रहें, लेकिन पूरी दुनिया की हथियार बनाने वाली कंपनियों की जेब हमेशा गर्म रखते हैं और हर साल न्यूयॉर्क में बैठे सैम चाचा के पास आते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर एक दूसरे की शिकायतें करते हैं। लेकिन आप ज्यादा परेशान भी ना हो, इस समस्या को हम आपके ऊपर पूरी तरह से नहीं लाद रहे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आप कितने बड़े भी 30 मार्खा क्यों ना हो, इसको जड़ से खत्म करने का हल नहीं निकाल सकते। बड़े बड़े आए और चले गए, आपको तो बस एक धांसू सा ऐप बनाना है जिससे पाकिस्तान में बैठे लोगों को लगे कि भारत की हर जगह किरकिरी हो रही है, हालत बद से बदतर होने वाली है, अमेरिका उसे फूटी आंख नहीं देखना चाहता और उसकी क्रिकेट टीम हर जगह पिट रही है। भारत में जब ये ऐप देखा जाए तो वहां लगे कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका दोनों ही की डांट पड़ रही है। हाफिज सईद जेल में चक्की पीस रहे हैं, दाऊद इब्राहिम पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लग गया है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अब इमरान अकरम और वकार यूनुस जैसे तेज गेंदबाजों को कभी नहीं शामिल किया जाएगा। आप बोलेंगे कि आपने कश्मीर का जिक्र तो किया ही नहीं। भाई साहब, जितना कहा उतना करो। कश्मीर का हल आपने निकाल दिया तो मोदी जी और मियां साहब की नौकरी का क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र हर साल इतना बड़ा जो जलसा करता है और जिसे बस भारत और पाकिस्तान के लोग देखते हैं, उसका क्या होगा? मीडिया की TRP का क्या होगा? आप तो बस जैसा हमने कहा ऐप बनाने की तैयारी करो। और हाँ, डिजाइन बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि इसमें हरा और केसरिया रंग कहीं से ना हो। अगर हरा ज्यादा हुआ तो पाकिस्तान के एजेंट कहलाओगे, केसरिया ज्यादा हुआ तो भारत के। हमारे लोग तो नहीं, लेकिन हमारी मीडिया इन सब बातों पर पैनी नजर रखती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो बता दूं कि हाल ही में न्यूयॉर्क में जब मियां साहब और मोदी जी ने एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाया तो मीडिया के हमारे सजग पहरेदारों ने TV को स्लो मोशन पर चलाकर देखा कि पहले किसने हाथ हिलाया। और आपको लग रहा होगा कि गूगल अर्थ और न जाने क्या क्या बनाकर आप ही दुनिया पर नजर रखते हैं। तो खैर, मोदी जी से तो आपका परिचय हो ही चुका है। सिलिकॉन वैली का शायद ही कोई कोना हो जहां आपने उनकी तस्वीरें न ली हो। इसी बात की तो हम आपकी कद्र करते हैं कि आपका बैकग्राउंड रिसर्च इतना सॉलिड होता है ना कि क्या कहने हैं। मोदी जी की कमजोरी को आपने खूब पहचाना, हर जगह कैमरे का इंतजाम किया और उनका दिल ऐसा जीता कि उनके आंसू बाहर निकल आए। अब अक्टूबर में मियां साहब आ रहे हैं वॉशिंगटन, उन्हें भी सिलिकॉन वैली बुला डालिए। और हाँ, उनका दिल जीतना हो तो कैमरा नहीं, निहारी और पाया का इंतजाम हर जगह रखिएगा। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
आपको ब्रजेश उपाध्याय की डायरी कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें युवाओं को लैपटॉप स्कूटी से लेकर गरीबों को धोती साड़ी तक देने का वादा किया गया है। और क्या क्या वादे किए गए हैं, ये दस्तावेज जारी करते हुए क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने और क्या है इस डॉक्यूमेंट पर महागठबंधन की प्रतिक्रिया, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की ये रिपोर्ट।
भाजपा ने अपने लोक लुभावन विजन डॉक्यूमेंट में वादों की झड़ी लगा दी है। इसमें युवा, महिला, किसान, दलित, अल्पसंख्यक यानी समाज के लगभग हर तबके से दर्जनों वादे किए गए हैं। इसमें छात्रों को लैपटॉप, छात्राओं को स्कूटी, दलित और महादलित टोलों में टीवी, गरीब परिवारों के लिए हर साल एक जोड़ा धोती साड़ी देने जैसे कई छोटे बड़े वादे किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में अपने कैबिनेट सहयोगियों और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ यह दृष्टिपत्र जारी किया। इसे जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने कहा कि बिहार के पास दो बड़े साधन हैं, एक तो खेती, दूसरी यहाँ काम करने वाले लोगों की तादाद।
केवल बिहार के जो दो बड़े साधन हैं, उसको बुनियाद बनाकर बिहार को एक विकास की यात्रा में ले जाने का मार्ग तय करें, रोड्स, हाईवेज, एजुकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पानी, बिजली, और उन साधनों का सबसे अधिक लाभ जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से सबसे कमजोर है उनको मिले, ये इस दृष्टिपत्र का मूल उद्देश्य है।
विजन डॉक्यूमेंट में मेक इन बिहार और डिजिटल बिहार का नारा भी दिया गया है। साथ ही इसमें हिंदुत्व पर भी काफी जोर है। इसमें गौपालन निदेशालय की स्थापना, गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा आरती से लेकर धर्मांतरण रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने जैसे कई वादे किए गए हैं। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को जदयू, राजद, कांग्रेस महागठबंधन ने दिशाहीन दस्तावेज बताया है। इसे हारी हुई पार्टी का थका हुआ दस्तावेज करार दिया है। जदयू प्रवक्ता अजय आलोक के मुताबिक भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट दरअसल रिविजन डॉक्यूमेंट है।
ये भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिविजन डॉक्यूमेंट। आप भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट से निकाल लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और इन तमाम के घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र इनका निकाल लीजिए और उसको इससे कंपेयर कर लीजिए, दोनों सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट करके निकाल दिया है। भाई जनता इसे नहीं यकीन करेगी क्योंकि ये वायदे इन्होंने 2013 में मध्य प्रदेश में भी किए थे, झारखंड में भी किए थे, छत्तीसगढ़ में किए थे, बाकी छोड़ दीजिए 16 महीने पहले देश से क्या वायदे किए, वायदों का क्या हुआ।
भाजपा के दृष्टि पत्र के जवाब में जदयू का यह भी कहना है कि वह घोषणा पत्र नहीं निश्चय पत्र में यकीन रखती है क्योंकि वह सत्ता में है। 7 सूत्री कार्यक्रम वाला निश्चय पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। जदयू के मुताबिक यह महागठबंधन का भी निश्चय पत्र है और सत्ता में आने पर महागठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करेगा। मनीष शांडिल, BBC पटना।
और इस विजन डॉक्यूमेंट पर लोगों का क्या कहना है जान लेते हैं।
देखिए, साल भर से टप गया है, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मगर फिर भी इन्होंने बोला था कि हमें आप 60 महीना दीजिए, 60 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो फिर आप हमसे बोलिएगा। तो अभी तो खैर उनका टाइम पूरा नहीं हुआ है, मगर फिर भी जो अंदाज से कर रहे हैं हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा।
जो अपने मौका से अपना फायदा उठाते हैं, हम लोग के लिए नहीं मरते हैं, हम लोग के लिए मरते हैं तो आज की यह हालत नहीं, हम लोग को नहीं होता, ऐसा उम्मीद नहीं लगता है कि अच्छे दिन आएगा।
ये सारी चीजें जो भी लैपटॉप है या स्कूटी वगैरह है, ये सब सेकेंडरी चीजें एक स्टूडेंट के लिए। बेसिक जो चीजें एक स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो इसकी एजुकेशन और फर्दर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो कि आई थिंक इस मैनिफेस्टो में या फिर उनके हिसाब से जो विजन डॉक्यूमेंट है इसमें ये मिसिंग है ये चीजें।
मुझे नहीं लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अगर उसके पहले अगर लोगों की जो बेसिक सुविधा है उसको देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लैपटॉप और स्कूटी दे करके मतलब बहुत ज्यादा बहुत अच्छा काम नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर लोगों को रोजगार दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
तो बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर बिहार की जनता को बहुत कम ही उम्मीदें हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि क्या ये घोषणा पत्र ख्याली पुलाव है या कितनी बातें ठोस हैं इसमें, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से।
जो इन्होंने दृष्टि पत्र से बोला है और इसके मुख्य बिंदु उन्होंने जारी किए हैं 50 मुख्य बिंदुओं में से अधिकतर पॉइंट्स जो पिछली सरकार यहाँ चल रही थी उसने जो स्कीम्स लागू की थी और जो यहाँ पर ई गवर्नेंस या राइट टू गवर्नमेंट सर्विस उस टाइप की जो चीजें थी वो सारी चीजें इसमें कही गई हैं। पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कृषि के लिए अलग से बजट लाया करेंगे, कृषि का एक अलग से उन्होंने 5 साल का बजट बनाया था। इनका पहला पॉइंट है कृषि का पृथक बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाएगा। तो कुछ चीजें तो वो हैं जो पहले से हैं यहाँ पर, कुछ चीजें वो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में पहले से ही लागू कर रही है। इसके अलावा कुछ चीजें वो हैं जिनको आप अगर देखें, जैसे इन्होंने कहा कि हम दलित महादलित टोलों में एक मुफ्त रंगीन टेलीविजन दिया जाएगा, इंटर और मैट्रिक पास करने वाली 5,000 बालिकाओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी, और ऐसे ही एक और लिखा है कि जितने मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इसके सतहीपन को दिखाती हैं। इसके अलावा जो ऐसा कोई नई चीज इसमें नहीं है, जो उन्होंने पैकेज घोषित किया था प्रधानमंत्री ने जिसमें बहुत सारी चीजें पुरानी थी, उसी पैकेज की कई चीजों को इसमें पैकेज किया गया है कि हर गांव तक हम बिजली पहुंचा देंगे, अगले एक साल में 24 घंटे बिजली आने लगेगी। लेकिन अगले एक साल में अगर हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे तो 24 घंटे बिजली कैसे आएगी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हर खेत को 24 घंटे बिजली देंगे उसका भी जिक्र नहीं कि बिजली आएगी कहां से। तो ऐसी कई चीजें इस घोषणा पत्र में हैं जिनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये करेंगे कैसे।
ये वो घोषणाएं हुई जो एक तरह से हवाई किले बनाने वाली बात हुई ऐसा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे घोषणा पत्र में सब कुछ ख्याली पुलाव ही है या कहीं कुछ ठोस बातें भी कही गई हैं?
इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जिससे लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, इन्होंने लिखा है कि राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाण पत्र सत्यापित करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी। अभी बिहार में ऐसा नहीं था, सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलता था, आपको एक राजपत्रित अधिकारी से कराना पड़ता था। तो एक अच्छी बात मुझे ये नजर आ रही है। दूसरी अच्छी बात जो नजर आ रही है जिसका लोगों को लाभ मिलेगा वो है कि नए प्रखंड अनुमंडल जिला वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए अभी कई जगह पर नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि उसका पुनर्गठन करेंगे और जैसी जरूरत होगी उसे हम मुहैया कराएंगे। तो इससे भी लोगों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती। तीसरी बात इसमें जो कहा है इन्होंने वो ये है कि कृषि का पृथक बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाएगा। ये मैं अच्छा मानता हूँ, भले ये पहले पिछली सरकार से ही लिया गई बात हो, लेकिन अगर NDA इस पर अमल करता है सत्ता में आने के बाद इससे बिहार को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बिहार की जो पूंजी है वो यहाँ की कृषि ही है। हर नदी के किनारे और तालाब के किनारे आरती की जाएगी, ये भी इन्होंने जोड़ा है कि गंगा के किनारे गंगा आरती होगी हर शहर में, बाकी सब तालाबों और नदियों के किनारे आरती होगी। तो ये पहले होती थी जब NDA की गवर्नमेंट यहाँ थी तो पटना में गंगा आरती होती थी, तो उसी को फिर इसमें शामिल किया है। लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और एक पॉइंट और है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम धर्मांतरण पर रोक लगाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये भी हुआ है कि 10 पत्र की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने इस पर सवाल उठाया है कि नियमानुसार कोई भी घोषणा पत्र जारी होने से पहले वेटिंग के लिए चुनाव आयोग के पास आना चाहिए, और उसने एडवाइजरी जारी की है कि सभी दल ये ध्यान दें अगर कोई घोषणा पत्र जारी करता है तो पहले चुनाव आयोग से वेटिंग करा ले। तो ये इश्यू बनेगा मुझे लगता है राज्य में चुनाव में।
वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से बात कर रहे थे संदीप सोनी। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। प्रगति, क्या कहते हैं आज के समाचार पत्र?
जी सुशीला, आज सभी जो राष्ट्रीय अखबार दिल्ली से निकलते हैं उनमें जो कमोवेश खबरें ली गई हैं वो सबसे पहले तो दादरी में जो तनाव हुआ एक व्यक्ति को पीट के मार डालने की घटना को लेकर, वो सभी अखबारों में है। भास्कर कहता है कि दादरी में तनाव, दहशत में पीड़ित परिवार, कमज़ोर हुई रिश्तों की डोर, लेकिन गाँव नहीं छोड़ना चाहता कोई परिवार। हालाँकि अन्य अखबारों में दादरी में जो तनाव है उसको लेकर राजनीति जो हो रही है उस पर खबर है। दूसरी खबर है काला धन बताने की समय सीमा समाप्त हो गई है और इसमें सिर्फ 638 लोगों ने घोषित की है 3,777 करोड़ रुपए की संपत्ति। ट्रांसपोर्ट हड़ताल, जो ट्रकों की हड़ताल चल रही थी उसमें एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। और बिहार में भाजपा ने जारी किया है विजन डॉक्यूमेंट, सपनों की सरकार के लिए सुनहरे वादों की बौछार, इस हेडलाइन से जनसत्ता ने ये खबर दी है। और भारत ने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाषण का एक जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है कि पहले POK से कब्जा हटाए पाक और कश्मीर से सेना हटाने की पाकिस्तान की मांग खारिज करते हुए भारत ने ऐसा कहा है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद जो हैं विजय गोयल, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को साबरमती का संत ठहराया है, बताया है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के टोंक जिले के एक स्कूल में शिक्षकों के पद भरने की मांग के साथ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और गाँव वालों के खिलाफ पुलिस ने कल FIR दर्ज कर ली। जयपुर से आभा शर्मा की ये रिपोर्ट।
राजस्थान के टोंक जिले का चोरू गांव राज्य के उन तमाम गांवों की तरह है जहां सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। चोरू गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुरा की छात्राओं ने शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग के साथ बीते मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 पर जाम लगाया था। इसके बाद पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया था और इस विवाद में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी भी की थी। इसमें करीब एक दर्जन छात्राओं को चोट आई और थाना अधिकारी सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा माया सुवालका ने टोंक जिला अस्पताल में छात्राओं से मुलाकात के बाद बताया,
अभी बच्चियां ठीक है, बाकी उनके ऊपर लाठीचार्ज तो किया गया था थानेदार के द्वारा। हमने उनके जो बयान है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए हैं और SP को भी लेटर दिया है जांच करने की, हमें रिपोर्टिंग दे क्या परिस्थिति रही है। तो हमने मेडिकल मांग लिया PMO से, सभी बच्चों का कार्रवाई करेंगे इनकी।
इस बीच ये मांग जोर पकड़ रही है कि छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस कर्मियों पर तो मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस से मारपीट और यातायात बाधित करने के आरोप में छात्राओं सहित 300 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अलीगढ़ थानाधिकारी अमर सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच करने वाले एडिशनल SP सुनील विश्नोई ने BBC को बताया,
125 छात्र छात्राएं हैं और करीबन 150 ही गांव के व्यक्ति हैं, टोटल करीब 300। सरकारी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर दी और थानाधिकारी जी और स्टाफ के साथ मारपीट हुई है। हाँ, बच्चियों की भी लगी है आपस में, जैसे फिर पत्थरबाजी हुई ना गाँव वासियों ने पत्थरबाजी की ना, उससे फिर आपस में उनके भी लगी, स्टाफ के भी लगी, उनके बच्चियों के भी लगी होनी।
चोरू निवासी गिरिराज मीणा की 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली बेटियां भी इस विवाद में घायल हुई, वे बताते हैं।
हाँ सर जी, हमको तो पता नहीं था और उन्होंने जाम लगा दिया, उनके टीचर की कमी थी, करने के लिए उन्होंने मांग की भाई हमारे टीचर की पूर्ति करो। जो है पुलिस प्रशासन गया और उनसे पूछा होता प्रीमियर उनके लाठीचार्ज कर दी। ये 10-11 बच्चियां हैं सर, ज्यादा गहरी चोट आए ना, ये हॉस्पिटल में भर्ती।
भारत ज्ञान विज्ञान समिति की कोमल श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य में विषय अध्यापकों की भारी कमी है, पर सरकार का ध्यान पद भरने पर नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अधिक है।
ऐसे तो ये बोलते हैं कि 26:1 हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो, पर एक्चुअली ये ऐसे काउंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितने हायर क्लासेस में जाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट टीचर, तो अगर 5 बच्चे भी हुए उस सब्जेक्ट के तो आपको सब्जेक्ट टीचर चाहिए। तो अब ये सरकार इसको पूरी करने को तैयार नहीं है। ऊपर से इन्होंने और क्या किया गड़बड़, जितने स्कूल लेक्चरर थे ना जो पढ़ा भी रहे थे सब्जेक्ट सीखे क्लासेस में, उन सबको बना दिए प्रिंसिपल और स्कूल लेक्चरर इन्होंने नियुक्त नहीं किए, तो वो सारे पद खाली हो गए।
जुलाई में नया सत्र शुरू होने के बाद से खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरने के लिए कई जगह विद्यार्थी प्रदर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस घटना से सबक लेगी और जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। जयपुर से आभा शर्मा।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में एक कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी में कम 10 लोग मारे गए हैं। फलस्तीन अधिकृत वेस्ट बैंक में एक इसराइली दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान में एक सैन्य मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 10 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सीरिया में रूस की सैन्य कार्रवाई से सीरिया के गृह युद्ध के और खिंच जाने का खतरा है। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि तालिबान लड़ाकों के लगातार प्रतिरोध के बावजूद सरकारी बल इस शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।